శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం భూతలే స్వయం రూప పదాయం దాతి సుర జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రసిద్ధ శ్లోక ఏ పద్యం సర్వస్యాహం హృది సన్నివిష్ట మత్ స్మృతి విజ్ఞానం అపోహనం చ వేదేశు సర్వేరహమేవ వేద్య వేదాంత ద్వైత విదేశ పరిట్రాన్స్లేషన్.
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आती हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है. मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ. निसंदेह मैं वेदांत का संकलन कर सकता समस्त वेदों का जानने वाला हूँ.
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से अग्नि हमें पचाने में सहायता करती है, अग्नि कितनी सहायता करती है, देखो सूर्य के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से बारिश, कुकिंग एंड डाइजेशन सब कुछ अग्नि के कारण आता है. इट्स सो इम्पोर्टेंट फायर. लेकिन इतना ही नहीं, खाना पीना पचाना तो चलो भगवान ने कहा कि वो मुझसे होता है, लेकिन सबके हृदय में चल अचल सबके हृदय में बुद्धि का जो वास्तविक जो तत्व है वो भी मैं हूं. सबके हृदय में परमात्मा के रूप में मैं बैठा हूं. मुझसे ही बुद्धि के सिद्धांत आते हैं, स्मृति विस्मृति ये मेरे कारण आते हैं. अनुबुद्धि विस्मृति स्मृति और अनुभव ये तीनों मेरे कारण आता है. पूरा पकड़ लिया भगवान ने, अब तो कुछ बचा ही नहीं. स्मृति विस्मृति और अनुभव तीनों, हाँ स्मृति ज्ञान और अपूर्ण, ये तीनों चीज भगवान कहते हैं वो मेरे कारण आता है. हर एक वस्तु देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल उसने दिया था कि अगर कोई चीज मुझे अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है वो मेरी स्मृति बताती है. अपने आप में समझ लो कि मुझे रबड़ी अच्छी लगती है तो रबड़ी अपने आप में अच्छी लगती है ऐसा नहीं है. हो सकता किसी को नहीं भी अच्छी लगती, किंतु मुझे अच्छी लगती है इसका स्मृति मेरे सेट हो गया है कि मैंने जब एक बार खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. अब मुझे याद रह गया कि जब भी रबड़ी आती है तो मैं मना नहीं करता, ठीक है रबड़ी है दे दो, राइट. इसका अर्थ क्या हुआ, स्मृति चाहिए उसके लिए. और फिर जब खाने के बाद स्वाद आता है उसका अनुभव होता है वो भगवान के कारण ही हो सकता है. ज्ञान स्मृति ज्ञान ज्ञान आया तो उसका स्वाद तभी अनुभव हुआ. अब खाने के बाद पानी पीने के बाद जब आप एक घंटा दो घंटा चला गया तो अपोहनम अपोहनम भी हुआ. अभी वो स्वाद चला गया तो अभी आपको फिर से खाना पड़ेगा उसको. अगर वही स्वाद आपको चाहिए तो वो स्वाद भूल गए आप. सो इन दैट वे स्मृति ज्ञान और अपोहनम एक साथ आप देख सकते हो. और बड़े लेवल पर भगवान कुछ महत्वपूर्ण चीजों को स्मृति भगवान आपको सहायता कर देंगे, है ना. जैसे आपका नाम वो आपको सहायता करता है, आपके पिताजी माताजी वो उसमें आपको सहायता करते हैं. फिर गिर हम कभी गिर गए थे वो आपको याद रहेगा. आपको जल गए थे, हाथ जल गया था तो आपको याद रहे. तो ये बहुत जो इम्पोर्टेंट वस्तु सब याद करवा देते हैं भगवान. और जो बहुत ही कष्टदायक वस्तु है जैसे मृत्यु पूर्व जन्म की तो भगवान भुला देते हैं. भगवान इतने दयालु है कि अगर हमें भुलाए थे नहीं ना पास्ट हिस्ट्री तो हमारी लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाता. अरे यस पूर्व जन्म में हाँ उसके लिए जीना असंभव हो जाएगा. हाँ लेकिन सारी लाइफ चेक करोगे तो खराब होगा. कौन सी योनि में कौन दुश्मन था, बाद में वही दुश्मन बाद में शत्रु मित्र बना था, कुछ नहीं है वो, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लाइफ कि आप जी नहीं पाएंगे। फिर भी लोग प्रयास करते ज्योतिष के पास जाने, पास्ट लाइफ में क्या था। अरे भगवान आपको बुला रहे हैं तो बोलो ना, व्हाई यू वांट टू नो पास्ट लाइफ में क्या था। ऑफ कोर्स ठीक है, दैट्स दे आर गोइंग, दैट्स नो प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान जानबूझ करके ऐसा सुविधा करके दिया है ना कि आप भूल जाओ, तो भगवान का कुछ रहस्य है ना इसके पीछे। पागलपन का ऐसा तो है नहीं कि बना दिया, बाद में अचानक से भगवान को न्यूज मिला कि तुम्हारी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकली है, क्यों बोले भूल जाता है ये, ऐसा नहीं है। भगवान सभी सबके स्मृति और विस्मृति को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। ऐसे आकर समझ लो कि कई बार स्कूल में बच्चा पढ़ के जाता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यूज प्रीचिंग में ये स्टूडेंट है तो पढ़ के जाता है, बहुत प्रिपेयर करके जाता है, और उधर जाकर लिखना शुरू करता है, लिखने में अचानक ब्लैंक हो जाता है। हर एक लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है ना, सब पढ़ा है, सब कुछ याद है, पेज नंबर तक याद है कि उस पेज इस पेज नंबर के ऊपर इसका आंसर भी लिखा है, पैराग्राफ भी बताया कि इसके तीन पैराग्राफ है वो भी बताए, वी नो एवरीथिंग, लेकिन याद नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गया। बहुत मेहनत के टाइम आप तो अचानक से भूल गया, और कभी क्या होता है कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, लेकिन पता नहीं कहां से अचानक से स्ट्राइक होती है। उस दिन वो टीचर लेक्चर में इसी क्वेश्चन बता रहे थे, पढ़ा तो नहीं था लेकिन किसी वो याद आया कि टीचर बता रहे थे, इसी क्वेश्चन बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि ये तीन तीन चीज को याद रखो, इसको काम में आएगा। हाँ, उस एक बार सुना था बस, अचानक याद आया। देन हु इज द पर्सन, हु इज द कंट्रोल, हु इज द पर्सन इज कंट्रोलिंग। हमारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कैन यू डू दिस, कैन यू कंट्रोल दिस, वो लोग नहीं कर सकते कंट्रोल। इज देयर एनी प्रोफेसर योर टीचर और एनी स्किल और एनी मेडिसिन कैन हेल्प यू, नो, कुछ नहीं काम करेगा, दवाई भी काम नहीं करेगा इसमें तो। देन फॉरगेटफुलनेस एंड मेमोरी, ये दोनों ही भगवान के कारण आते हैं। मत स्मृति ज्ञान मतोवान, कृष्ण इज वेरी काइंड, बहुत दयालु है। बुला देते जानबूझ करके भगवान, भगवान हमारी हृदय में सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठते हैं ना, तो स्मृति ज्ञान अपन हम जानते हैं, इसके कारण हमारी हर एक छोटी इच्छा को ध्यान रखते हैं, पूरा जान लेते हैं हमारे मन में क्या क्या चल रहा है, सब कुछ जान लेते हैं, और उसी के आधार से फिर आपको हेल्प करते हैं। देखो कृष्ण अगर परमात्मा होते ना ओनली, तो परमात्मा केवल उपदृष्टा अनुमानता है बस, वो तो सप्लाई करते हैं आपको, आप इच्छा क्या पूरा किया, इच्छा क्या आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है, जब वैष्णव भगवान की शरणागत होता है, माला का जप करता है, शरणागत होता है, नवदा भक्ति करता है, तब वो कृष्ण से जुड़ता है, परमात्मा से नहीं जुड़ता है। लेकिन जब वो कृष्ण से जुड़ता है तो फिर कृष्ण हृदय में रहते हैं, और कृष्ण जब हृदय में रहते हैं तो क्या करते हैं, वो सहयोग करते हैं, इच्छा पूरी करने का काम नहीं उनका, उनका काम है आपको इच्छा से मुक्त करने का काम। सो ही हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड डिजायर्स। इच्छा तो मन में सबके मन में आती है, अनवांटेड राइट, हमेशा हम खुद आप सोचते होंगे क्या कोई कभी कभी मन ऐसी ऐसी इच्छा करता है, वो शर्म आ जाती है कि क्या मेरा मन कितना दुष्ट है कि इतना हरिनाम का महिमा सुन करके, भगवान का नाम धाम लीला सबका महिमा सुन करके भी मेरे मन में ऐसे कचरे जैसा फिल्थी थॉट्स आते हैं कि क्या करने का ये है। इतने सालों के बाद भी अभी भी मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं। सो कृष्ण नोज दिस थिंग, भगवान जानते हैं आपकी समस्या को कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तब क्या चाहते हैं? फिर भगवान आपसे पूछेंगे व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो आप, और आप कहते कि नहीं नहीं मुझे तो इसमें रखो ही मत, बोले निकाल लो, बोले तुम्हें तो निकलना तो है नहीं, तुम तो केवल बोलते हो, लेकिन फिर कहते कि नहीं मैं चाहे बोलूं या नहीं बोलूं मेरी सुनना मत, मुझे इसमें से निकाल लो, तो फिर कृष्ण आपको हेल्प भी करते हैं। अगर कृष्णा को आप कहते हो कि नहीं नहीं थोड़ा बहुत भोग करने दो, फिर भी वो हेल्प करते हैं, फिर वो बोलेगा ये तो पागल हो गया इसको भोग करना है, तो अभी वो भोग नहीं करने देंगे, तो आपकी इच्छा पूरी नहीं करने देंगे। इज वेरी मर्सीफुल, कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं तो वेदास gives direction by which to understand Krishna in the process of realizing Him. Vedanta krit veda videvacha vedesh sarvir ahamev vedyo, सभी वेदों में जानने जैसा मैं हूं। अगर कोई व्यक्ति वेद को पढ़ता है और उसका निष्कर्ष ये नहीं आता कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है, तो सर्व वेदेस अहम है, पढ़ना लिखना सब फेल, तो उसका वेद पढ़ना फेल हो गया। वेदेस अहम वेद्यो, और ये वेद को बनाने वाला खुद भगवान है वेदांतकृत, और वेद विदेव, और वेदों को अच्छी तरह से जान भी नहीं सकता कोई, वेद बना नहीं सकता कोई, किसी के पास शक्ति है नहीं, इसमें व्यास भी नहीं कर सकता ये काम, ये कृष्ण ही कर सकते हैं। ऑफ कोर्स व्यास उनका ही अवतार है, फिर भी वेदेश शरीर अहमेव वेजो, अगर आप वेद वेद व्यास जी ने वेद लिखे ऐसा मान के चलो तो ही इज इनकार्नेशन वेदांत के, तो फिर वो स्वयं भगवान का अवतार हुआ, और अगर वो उन्होंने लिखा तो फिर चतुष्टयोगी भागवत जन्माद्य ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले ज्ञान भगवान ने दिया, तो ज्ञान को बनाने वाले वो है, और वेद को पूर्ण रूप से जानना किसी के बस में नहीं है, वेद को कोई नहीं जान सकता, केवल वेद व्यास समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता कि वेद को हर एक को ऐसा, तो वेद को जानने वाला मैं हूं, और वेद में जानने का जो लक्ष्य है वो भी मैं हूं, वो आगे वाले पहली वाली लाइन में भगवान ने बताया कि वेद में वेद का निष्कर्ष यही है कि अहम सर्वस्व प्रभु। द वेदास गिव अस डायरेक्शन बाय व्हिच टू अंडरस्टैंड कृष्ण इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग हिम, द अल्टीमेट गोल इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, बाय अंडरस्टैंडिंग विद द क्रिएटर वन कैन अंडरस्टैंड हिज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट प्रोसेस वन कैन अप्रोच हिम, एट द एंड वन कैन अटेन द सुप्रीम गोल हु इज नो अदर देन द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद ने क्या बताया, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, और इसके अतिरिक्त 15वें श्लोक में प्रभुपाद ने लेक्चर्स अलग अलग जगह दिए थे, सो उसके विषय में जस्ट सी व्हाट प्रभुपाद सेड इन दोस लेक्चर्स। प्रभुपाद सेज दैट जैसे आपने देखा है कि कोई पालतू कुत्ता उसके मालिक उसको लेकर के जाता है और मालिक उसके साथ साथ चलता है, और कुत्ता जहां रुकता है वहां मालिक भी रुकता है, और कुत्ते को चलना है तो चलता है, कुत्ता दौड़ता है तो वो दौड़ता है, और कुत्ता यूरिन करना चाहता है, स्टूल पास करना चाहता है, तो मालिक भी से ओके आई विल वेट, मालिक उधर खड़ा रहता है। कृष्ण सो काइंड इज सो अफेक्शनेट, वो इतने दयालु है कि हम मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने आए हैं और वो भगवान हमें सुविधा भी दे रहे हैं एंजॉय करने की, जिस तरह से कुत्ते को उसका मालिक सुविधा दे रहा है, वो इधर टट्टी पास करना इधर टट्टी पास कर, ऐसे कृष्ण सो कहे, बट कृष्ण वॉन्ट्स एवरी लिविंग एनी टू बी ओबेडियंट। कृष्ण ऐसा कहते हैं कि तुम मेरे ओबेडियंट रहो, लेकिन वो दैट इज कृष्ण सेंटीमेंट, ये कृष्ण का एंजॉयमेंट है कि हम उनके आदेश के हमको सुने। कृष्ण प्रैक्टिकली सभी मानव समाज में सब हर एक जीवात्मा से मांग रहे हैं कि पत्रम पुष्पम से फलम तोयम, उनको भूख नहीं लगी है, उनको प्यास नहीं लगी है, वही सबको सारी चीज प्रोवाइड करने वाले हैं, सब कुछ वही प्रोवाइड करते हैं। स्टिल ही इज हैंकरिंग, ही इज हैंकरिंग, पत्ता दे दो, पुष्प दे दो, पानी दे दो। कृष्ण इज सेइंग लाइक दिस, ही डजंट नीड, उनको नहीं चाहिए, फिर भी कह रहे दीजिए, मुझे दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, इज सो काइंड। एक पत्ते से सुख प्रसन्न हो जाते, एक फूल देने से प्रसन्न हो जाते, एक फल देने से प्रसन्न हो जाते, सो काइंड। पानी भी कुछ भी पानी, नदी का पानी हाथ में थोड़ा सा लेकर के दे दो, सो हैप्पी, यू नो, एक्सेप्टिंग दैट। उसका एक ही, कृष्ण का एक ही उद्देश्य है, सिंपली ट्राई टू टर्न योर फेस टू मी, मेरी और एक बार मुख करके देखो, दैट्स इट। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और तुम बोलोगे मैं यहां मूर्ति बन के प्रकट हो जाऊंगा, गोविंद जी खड़ा रहूंगा पूरा दिन, यू नो, त्रिभंग स्वरूप में पूरा दिन खड़ा रहूंगा, चेयर भी नहीं मांगूंगा बैठने के लिए, आई विल कीप स्टैंडिंग, खड़ा रहूंगा और क्या करूंगा, तुम्हारी सारी सेवाओं को स्वीकार करता रहूंगा, चावल लो, भोग लगा रहे हो, जो कुछ करना चाहते हो। सो इट्स टाइम टू टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड एंड, ये भगवान का मिशन है। सो चैतन्य महाप्रभु के रूप में खुद आकर के उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, डोंट बॉदर मैन्युफैक्चरिंग योर थिंग। तो प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया, प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया कि पेरिस में प्रभुपाद जब थे तो एक लड़का एक लड़की उनको मिलने आए थे, और दोनों कवि थे, लड़का कवि था, प्रभुपाद ने कहा कि वो लड़का जो था वो कवि था। तो मैंने उनको पूछा किस प्रकार की कविता आप लिखते हो, लड़के को पूछा कौन से सब्जेक्ट पर लिखते हो, तो लड़के ने कहा कि कोई सब्जेक्ट पे नहीं लिखता, कविता लिखता हूँ लेकिन कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं होता उसका। तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज पागल, पिशाची पायल जन मति छन्न होए, मायाग्रस्त जीव से दशा उपजाए। घोष्ट, पिशाची का अर्थ होता है घोष्ट, अगर कोई व्यक्ति को भूत लग जाता है तो सब प्रकार का कचरा बोलता रहता है वो, मायाग्रस्त जीव से दशा उपजाए, ऐसी दशा हो जाती है मायाग्रस्त जीव की, मटेरियल वर्ल्ड में आते ही माया के कारण हम पागल जैसे बन जाते हैं। नूनम प्रवत्ते कुरुते विकर्म। सो those who have come to this material world under the influence of external energy of Krishna Maya, they are all madmen. It is not Shastra, it is the opinion of medical science. Yeah, Prabhupada is saying this. Means Bhagavan ko bhool karke jo jeev yahan aata hai, aisa vyakti जो अपोहनम है वो भगवान नहीं भुलाते उसको, भगवान अपने आप को नहीं भुलाते। दिस इज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। बोला कोई कहेगा कि बोले भगवान अपोहनम दिखाए तो अर्थात हम माया में गिरे वो भी भगवान के कारण ही गिरे ना। भगवान कहते गीता में कि मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, मुझसे स्मृति आती है विस्मृति आती है, तो हम भगवान को भूल जाते तो विस्मृति भगवान से ही आती है। कोई ये दावा कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं चाहते ऐसा। अगर भगवान ऐसा चाहते तो भगवान बार बार ऐसा क्यों कहते पतम पशुम फुटम तो क्यों कहते ऐसा कि अगर वो चाहते हो कि हम भूल जाए उनको तो भगवान ऐसा क्यों कहते कि जो मां स्मरति नित्य सह मन मना है थिंक ऑफ मी ऐसा क्यों कहते मुझे याद रखो हमेशा इज नॉट कॉन्ट्रडिक्शन क्यों करते हो अर्थात हम जब भगवान को भूलते हैं इसमें हमारी अपनी इच्छा है लेकिन भूलने में परमिशन भगवान की लेनी पड़ती है हमें तो इसलिए परमात्मा आपकी इच्छाओं के रूप में आपकी भावनाओं को कदर करके आपको भुला देता है भगवान को कृष्णा नहीं करते ऐसा परमात्मा जो होता है वो एक्सपर्ट डायरेक्टर जैसा है एक्सपर्ट डायरेक्टर जो होता है वो इतना आपको एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं हीरो हीरोइन जो भी उनको इतना इसके अंदर उत्पोत कर देते हैं कि यू फॉरगेट कि आप फिल्म स्टार हो वो भूल जाते वो उसको वो कैरेक्टर को इतना ग्रहण कर तो भगवान भी उस तरह से आपको भुला देते हैं यू फॉरगेट यू आर लाइक अ यू प्ले द गुड मूवी अच्छा मूवी प्ले करते हैं आप लेकिन फिर साथ साथ में एग्जाम ये हेल्प भी करते हैं इसे इस तेज सर दरबार पर थे जय मारे का जय इफ यू वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड कृष्णा विल प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज यू कैन एंजॉय बट कृष्णा से यू विल नेवर बी हैप्पी यू विल सिंपली बी मोर एंटेंगल अगर आप लिबर्टी लोगे भगवान को भूलने की तो आप अधिक परेशान हो जाओगे श्रीमद् भागवत में कहा गया है असुरों को भुलाने का और भक्तों को याद कराने का अपोहरण और स्मृति भगवान का आता है असुर भगवान को भूल जाते हैं और भक्त भगवान को नहीं भूलते ये भगवान की कृपा से होता है जो भूलना चाहता है उसको जन्म जन्म तक भुला देते हैं और जो याद रखना चाहता है वो कभी नहीं भूलता और वो ना भूले उसके लिए भगवान उसके लिए भक्त भेज देते हैं ताकि वो भूले ही नहीं कभी फिर एक बार प्रभुपाद ने 34 कांड में ये भी कहा है कि जीवात्मा जो कुछ इच्छा करता है भगवान उसको नोट करते हैं और उस इच्छा को पूरी करने का पूरा चांस देते हैं अगर अभक्तों की इच्छाओं को पूरी की जा सकती है तो भक्तों की इच्छाओं को पूरी क्यों नहीं करेंगे भगवान सो प्योर डिवोटी सिंपली वॉन्ट्स टू एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड विदाउट मटेरियल डिजायर इफ ही वॉन्ट्स विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट वेयर द लॉर्ड इज सिचुएटेड एंड इफ इट्स विदाउट अल्टीरियर मोटिव व्हाई शुड लॉर्ड नॉट अंडरस्टैंड दैट भगवान कोई सेवा करना चाहता है उसके मन में और कोई दूसरी स्वार्थ नहीं है तो भगवान उस बात को क्यों नहीं सुनेंगे इसलिए अगर कोई सिंसियर भक्त सेवा करता है तो उसकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं एग्जाम्पल माधवेंद्रपुरी कौन सा एग्जाम्पल माधवेंद्रपुरी में उनके हृदय में एक छोटी सी इच्छा आई थी कौन सी अमृत के लिए खीर खाने के लिए लेकिन वो इच्छा गलत टाइम पे किया था उन्होंने तो फिर भी इच्छा हुई तो भगवान तो फिर भी भगवान है ना इट्स लाइक दैट समझ लो कि आप पिता हो और आपका बच्चा है अभी आप खा रहे हो और आपका बच्चा आकर के कहता है सोचता है कहता नहीं है क्यों सोचता है कि पापा के प्लेट से मैं भी थोड़ा खाऊं तो आप उसका बुरा थोड़ी मानते हो कि आपके प्लेट से अगर वो खाना चाहता है तो इससे आप बुरा नहीं मानते तो कृष्ण अपने भक्तों का इतना प्रेम करते हैं कि माधवेंद्रपुरी को तो एक प्लेट क्या बोलो तुम ही खाओ ना सब कुछ यू ईट एवरीथिंग मुझे उसमें और प्रसन्नता होगी. ही इज सो हैप्पी, ही इज सो लविंग. बट कृष्णा शास्त्र का नियम है, ड्यूटीज को ऑफर के बिना उस समय इच्छा करना गलत है. तो माधवेंद्रपुरी अपने आप को बहुत ही तुच्छ मान रहे थे. अरे भगवान उनकी इच्छा को देखा कि एक निस्वार्थ है, ये सरेंडर डिवोटी है, तो भगवान उसकी इच्छा को तुरंत पूरा किया. चोरी किया खीर का. फिर दूसरा एक एग्जाम्पल प्रभुपाद श्रीमद भागवतम के दूसरे स्कंद में है, ध्रुव महाराज वाला, उसमें कौन सा है?
उन्होंने ब्रह्मा जी जैसा राज्य प्राप्त करने के लिए मतलब उन्होंने भौतिक इच्छा थी, फिर भी भगवान ने कृपा की और फिर
यस ही नोज व्हाट ही वांट. कर्द मुनि ही नोज दैट ही वांटेड टू मैरी, तो वो अरेंज करके दिया. सो प्रभुपाद सेकंड कैंटो में ऐसा लिख रहे हैं कि भगवान के भक्त जब प्रवचन देते हैं ना या कथा वर्णन करते हैं, तो ये नहीं सोचना कि वो लोग इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकते हैं. स्वतंत्र भाव से लेक्चर देना, कथा बताना, ये नहीं सोचना कि वो स्वतंत्र भाव से कर सकते हैं. वो लोग केवल उतना ही बोल सकते हैं जितना भगवान उनसे बुलवाना चाहते हैं, उससे अधिक नहीं बोल सकते, क्योंकि ऋषिकेश तो कृष्ण है भगवान. तो कृष्ण जितना बुलवाना चाहते हैं उतना ही भगवान बोलते हैं और भक्त बोलते हैं. हम तो केवल निमित्त है. इसे कई बार हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, ओम अज्ञान निवारण से क्यों गाते हैं भक्त शुरुआत में, ताकि भगवान बुलवाए उनको जितना बुलवाना चाहते हो. स्वतंत्र नहीं है भक्त कि कुछ भी बोल सकता है. जैसे प्रभुपाद कहते थे ना, ऐसे कंधे पे हाथ रख करके ऐसे, कि जब मैं ग्रंथ लिख रहा था तो कृष्णा वॉज सिटिंग हियर, ऐसे हाथ करके प्रभुपाद बताया था कि कृष्णा वॉज सिटिंग हियर, इधर बैठ रहे थे और वो लिखवा रहे थे, ये लिखो ये लिखो ये लिखो. सो ओके, सो टेक्स्ट नंबर 15 तक अभी तक इस चीज का डिस्कशन हुआ. आगे भगवान संबंध अवैध प्रयोजन बताने वाले हैं, लेकिन अभी हम छोटा सा डिस्कशन करते हैं इसको लेकर के कि हम परमात्मा की अनुभूति को कैसे अनुभव कर सकते हैं. जस्ट रैंडम क्वेश्चन, और भगवान हमारे पूर्व जन्म का विस्मृति क्यों करवाते हैं, और हम भगवान के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का लाभ कैसे उठा सकते हैं. तो ये तीन प्रश्न के विषय में यू माइट लाइक टू से समथिंग, और मैं भी तीनों एक एक प्रश्न के विषय में बोल सकते हैं. भगवान के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं. हाउ कैन वी कॉन्शियसली टेक एडवांटेज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सुपर सोल. सो यू वॉन्ट टू डिस्कस, आई कैन डिस्कस दैट. अब तीन श्लोक, उसमें संबंध चार श्लोक बचे, पांच श्लोक बचे, तो उसमें अब भगवान संबंध अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान बताएंगे. 16, 17, 18 जो है वो संबंध ज्ञान है, 19 जो है वो अभिधेय है और 20 जो है वो प्रयोजन है। श्लोक संख्या 16 18 ये तीन श्लोक जो है ना वो संबंध ज्ञान बताया गया है। संबंध का अर्थ होता है भगवान से हमारा संबंध, अभिधेय का अर्थ होता है भगवान को प्राप्त करने की विधि, और प्रयोजन का अर्थ होता है लक्ष्य। 19 है वो अभिधेय, अभिधेय सारा शास्त्र इस तीन अलग अलग विभाग से विभाजित है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। वेद उपनिषद पुराण सब इसके ऊपर आधारित है। मदन मोहन जी संबंध है वो उपनिषद, राधा मदन मोहन जो है वो संबंध के देवता माने जाते हैं। राधा मदन मोहन अर्थात राधा मदन मोहन आपका संबंध भगवान के स्थापित करवाएंगे, आप निरंतर कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करेंगे और आप उनको हमेशा याद रखेंगे, वो कार्य ये करवाता है राधा मदन मोहन जी विग्रह। आपकी भक्ति में आपका पालन करना, पोषण करना, आपकी सहायता करना, ये कार्य करते हैं गोविंद जी, राधा गोविंद जी। और आपको अंतिम प्रेम प्राप्त हो या आपकी प्रेम प्राप्ति की तक आपको पहुंचाना, और प्रेम प्राप्ति के बाद आपके साथ जो ऋषि प्रोकेशन होता है भगवान के साथ ऋषि प्रोकेट करना, यह है गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जी ये कार्य करते हैं। इसलिए संबंध देव, अभिधेय देव और प्रयोजन देव तीन अलग अलग विग्रह है। गोविंद गोपीनाथ, गोविंद मदन मोहन, गोविंद गोपीनाथ। गोविंद मदन मोहन जी के आचार्य है सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो उनकी पूजा करते थे उनके प्रतिमा मूर्ति में। गोविंद जी के आचार्य है जिनकी सेवा करते थे वह रूप गोस्वामी, हाँ गोविंद जी की सेवा करते रूप गोस्वामी। और गोपीनाथ जी की सेवा करते थे मधु पंडित गोस्वामी, मधु पंडित गोस्वामी ये गोपीनाथ जी की सेवा वो करते थे। राधा माधव की जयदेव गोस्वामी के प्रति, जयदेव गोस्वामी जयदेव जयदेव गोस्वामी और भक्तिनाथ ठाकुर दोनों राधा माधव की सेवा करते थे। नाउ तीन श्लोक साथ में ले सकते हैं 16, 17, 18 और ये ओके वन बाय वन लीजिए, 16 लीजिए एक करके लेते हैं।
जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत और क्षण होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत और क्षण कहलाता है।
अभी यहाँ पर दो प्रकार के जीवात्माओं की बात हो रही है, इसमें से एक भी भगवान नहीं है। ये दो जीवात्माओं की बात हो रही है, एक भी भगवान नहीं है, और इसमें से एक है जीवात्मा च्युत और दूसरा है अच्युत। इसमें भगवान का अंश नहीं है, दोनों ही जीवात्मा ही है, एक बद्ध आत्मा है और एक मुक्त आत्मा है, ये दोनों ही। प्रभुपाद तात्पर्य का पैराग्राफ पढ़ सकते हैं आप, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन द लॉर्ड इन हिज इनकार्नेशन।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत तथा अच्युत। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश यानी विभिन्नांश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर शरण सर्वाणी भूतानि और प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है, लेकिन जो परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे जब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं, वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भव के स्रोत्र है,
यहाँ
पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है।
सर्व सर्वाणि भूतानि कोटस्थ अक्षर उच्यते, ऐसा है राइट?
यस।
फर्स्ट लाइन क्या है? द्वामी मो पुरुषो लोके अक्षर चाक्षर एव च सर्व सर्वाणि भूतानि। लेकिन सर्वाणि भूतानि मीन्स सारे ही क्षर होते हैं सर्वाणि भूतानि, क्योंकि वो च्युत है, वो गिर सकते हैं। कुटस्थ अक्षर उच्चरे, कुटस्थ शब्द का अर्थ होता है वननेस, भगवान की इच्छा और उस पर्टिकुलर जीवात्मा की इच्छा, ये दोनों इच्छा जब एक समान हो जाती है उस समय उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को अक्षर माना जाता है। कुटस्थ अक्षर उच्चरे इच्छाओं का तादात्म्य होता है, अस्तित्व का तादात्म्य नहीं होता है, अस्तित्व एक नहीं हो जाता है। अक्षर आत्माओं का अर्थ ये नहीं होता है कि वो लोग ब्रह्मलीन हो चुके हैं या भगवान में मर्ज हो चुके हैं, भगवान में समा गए हैं, ऐसा नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान की इच्छा और उनकी इच्छा में अब कोई अंतर नहीं। नहीं, जो लोग मायावादी होते हैं वो लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर क्षर अर्थात हम सब, मायावादी ऐसा कहते हैं, और अक्षर का अर्थ होता है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग ब्रह्म में लीन हो गए, ऐसा वो लोग कहते हैं, ब्रह्म मुक्ति, ब्रह्म सायुज्य, ऐसा वो नहीं मानते हैं। मायावादी भगवान से विलीन करना चाहते हैं अपने आप को, अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। भगवान की इच्छा और मेरी इच्छा एक होगी, उस समय मैं उनका भक्त बनूंगा, तभी ये हो पाएगा। भगवान की इच्छा क्या है कि उनकी शरणागत हो जाऊं और उनकी सेवा करूं, और वही इच्छा जब मेरी इच्छा हो जाएगी कि मैं भी उनकी सेवा करूं, उनके शरणागत हो जाऊं, तो फिर मेरी इच्छा और उनकी इच्छा एक हो गई। इसलिए ऐसा व्यक्ति अक्षर माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले एक बार हमने चर्चा किया था, इहायस्य हरिदास से कर्मणा मनसा ज्ञा, कोई व्यक्ति कर्म से, मन से, शरीर से निरंतर भगवान की सेवा कर रहा है, उसको जीवन मुक्त मानना चाहिए। वो इसलिए मानना चाहिए क्योंकि वो भगवान की इच्छा और उसकी इच्छा एक हो चुकी है। तो ऐसे लोग जो है, कुटस्थ का अर्थ होता है वननेस, कुटस्थ अक्षर उच्चते, ऐसे लोगों को अक्षर माना जाता है। विशेष करके अगर आप 75% भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, तो आध्यात्मिक शक्ति में भी बहुत सारे जीवात्मा है, मुक्तात्मा, मुक्तात्मा के विषय में भी इसे पूरा डिटेल है। जैसे एक होता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उसके इसके ऊपर एक होता है जीवन मुक्त, जो उसका शरीर भौतिक है लेकिन वो जीवन मुक्त अवस्था में है, और तीसरा होता है स्वरूप सिद्ध, अर्थात जिसने भौतिक शरीर छोड़ दिया है, अब भगवान के धाम चले। तो तीन अलग अलग श्रेणी के लोग हैं स्वरूप सिद्ध, तो ये तीन अलग अलग श्रेणी है, लेकिन तीनों आते हैं भगवान मुक्ति की कामना करने वाले। तो ये जो मुक्त आत्मा होते हैं, जो भगवान के पार्षद होते हैं या भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के धाम में रहते हैं, नित्य सिद्ध लोग भी होते हैं, ये सब अक्षर होते हैं, इनका पतन नहीं होता है, वो हमेशा उधर ही रहते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो चुकी है। लेकिन हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे, इसलिए हम अभी वो है, कौन से है, शरत सर्वांग होता है, अभी हम शरत सर्वांग होता है। हम लोग सब क्षर में आते हैं, जीव भूत माना जाता है ना उसको, जीव भूत, जीव भूत, हम लोग जीव भूत में आते हैं और हम ये अक्षर स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ संप्रदाय अक्षर को बोलते हैं, अक्षर अक्षर का अर्थ होता है कि वो मुक्ति की अवस्था, लेकिन मुक्ति की अवस्था में अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, अस्तित्व बना रहता है। यस, स्वरूप से मान भौतिक शरीर छोड़ देता है वो भगवान के धाम में, जैसे वैकुंठ में प्रवेश किया उसको। द्वामिमौ पुरुषौ लोके, लोके शब्द का दूसरा अर्थ होता है वेद, लोके शब्द जो है ना उसका एक दूसरा अर्थ वेद, अर्थात वेदों में ये दो प्रकार के लोगों का वर्णन आता है, जीवात्माओं का, मुक्तात्मा और बद्धात्मा, और वो लोग स्थिर होते हैं, कुटस्थ का अर्थ होता है माउंटेन जैसे स्थिर होते हैं, कुटस्थ अक्षर उच्चते, कूट होते हैं ना, कूट कूट जैसे स्थिर होते वो, छठे अध्याय में भगवान ऐसा कहते हैं कि उसका मन जो होता है वो कुटस्थ, योगी का मन होता है ना एकदम स्थिर हो जाता है, छठे अध्याय में ऐसा कहते हैं। सो कैन यू चेक हाउ बी द प्रॉपर्टीज, सोलह पढ़ लिया, ठीक है, ओके। नाउ 70वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि इसके अतिरिक्त और एक पुरुष है, पढ़िए। यस,
तो उनको
जीवन मुक्त अवस्था में बोलना चाहिए। यस, जीवन मुक्त अवस्था में, क्योंकि उनका भौतिक शरीर अभी भी है, लेकिन तीनों में एक कैटेगरी आती है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, तीनों में एक कैटेगरी आती है, ये तीनों स्टेजेस। मुमुक्षु में ब्रह्म मुमुक्षु भी होते हैं ना, ब्रह्म का उपासक हो गए लेकिन मुक्ति चाहते हैं। अभी भक्त जो होता है वो मुक्ति तो चाहता नहीं, लेकिन उनके कर्म से वो मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त अवस्था में। ऐसे चैतन्य सनातन शिक्षा है, उसमें छह प्रकार के मुक्तिकामी बताए, सिक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मुक्तिकामी, नहीं दीज आर डिफरेंट मुक्तिस, बट दीज आर कैटेगरीज ऑफ पीपल, देयर आर सिक्स कैटेगरीज ऑफ पीपल, जिसमें से तीन मैंने अभी आपको बताया। ऐसी ही तीन मायावादियों की होती है और ऐसी ही तीन ब्रह्मवादियों की होती है। ऐसे मायावादी की जो होती है वो भी आत्माराम श्लोक की व्याख्या है, उसमें आता है आत्मरामश्च मुने निर्ग्रंथ, तो आत्माराम श्लोक की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु बताते हैं छह प्रकार के ऐसे होते हैं मुक्त अलग अलग। सो ऑफकोर्स दैट्स, हम आप जब आपके साथ भक्ति वैभव के बाद भक्ति, वेदांत के बाद भक्ति सार्वभौम करेंगे, उस समय उसके विषय में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। यस, टेक्स्ट नंबर
17। एक परम पुरुष परमात्मा छे जो साक्षात अविनाशी भगवान छे अने जो त्रणे लोकमां प्रवेश करीने ते सर्वनुं पालन करी रह्या छे।
आप देखो यहाँ पर पूरा डेफिनेशन अलग है, पूरा उत्तम पुरुषत्वन्य वही है ना, उत्तम पुरुषस्तवन्य परमात्मे परमात्मे इति उदाहरण। फिर यह लोकम विभर्ति अव्यय ईश्वर यह लोकत्रयम आविश्य। तो अभी देखो यहाँ पर एकदम क्लियर बताया गया है मैं परमात्मा नहीं हो सकता या अक्षर भी परमात्मा नहीं हो सकता है, परमात्मा तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन। बिसाइड्स दिस टू द्वामिमौ आ गया अर्थात दो लोग, इसके अतिरिक्त पुरुषस्तु अनन्य। व्हाट इज द स्टडी? उत्तम पुरुषस्तु, उत्तम ये दोनों के अंदर नहीं है, ये दोनों से ऊपर है। उत्तम पुरुष यहाँ तू शब्द का अर्थ होता है बट, है ना, उत्तम पुरुषस्तु अन्य वो परमात्मा का वर्णन आता है। वो 16वां श्लोक में बताए गए दोनों कैटेगरी से पर है। ये कभी इसमें गलती नहीं करना चाहिए हमें कि ऊपर जो अक्षर बताया था और ये परमात्मा दोनों एक है, नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट। दिस इज विष्णु तत्व, 17वें श्लोक में है वो विष्णु तत्व, और 16वें श्लोक में जो बताया था वो जीव भूत कुटस्थ जीव तत्व है, परमात्मा विष्णु तत्व है। सो देयर इज नो वे, मायावादी लोग यहां पर बहुत गड़बड़ी करते हैं। मायावादी लोग क्या कहते हैं कि वही है 17वें नंबर में और 16वें में, दोनों एक ही बात बताई है। संस्कृत के ग्रामर को, संस्कृत में बहुत सारी होते हैं। यस, बिकॉज एक ही शब्द के 25 अर्थ होते हैं, तो सारे अर्थ को जहाँ जिस तरह से उनको पूरा जोड़ना जोड़ करके एक सेंटेंस क्रिएट कर देते, बता देते हैं कि भाई देखो यहाँ पर भगवान कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया, वेरी क्लियर। विभर्ता, विभर्ता का अर्थ होता है कि सभी जीवात्माओं का पालन करने वाला, मैं पालन करने वाला, साफ बता रहे। जो 12वें और 12, 13, 14, 15 जो था इसी अध्याय में पालन करने वाला कि मैं पकाता हूँ अन्न सूर्य के रूप में, फिर चंद्रमा के रूप में रस देता हूँ, ये सब कुछ भगवान ने बताया 4 श्लोकों में, उसको फिर से रिपीट कर रहे। विभर्त वो मेरे कारण हो रहा है, विभर्त अव्यय ईश्वर। इसको कई बार ये 16, 17, 18 जो है ना उसको 30 श्लोकी गीता भी कहते हैं, भगवद गीता 15 अध्याय 16, 17, 18 तीन श्लोक, इसको 30 श्लोकी भगवद गीता भी बोलते हैं। अभी यहां पर क्या लिखा, यह लोकत्रयम आविश्य, त्रयम आविश्य तीन लोकों, तो तीनों लोक आ गए इसमें, ऊर्ध्व मध्य और पाताल, सब तीनों लोक इसका मैं उसमें प्रवेश करता हूं।
छह ऊपर के नीचे के साथ और एक
यहां मध्य लोक, हाँ इस तरह से बोला जाता है। यस, लेकिन है एक्चुअली 14 टोटल।
यस, ऊपर 6 और नीचे 7।
यस यस, ऊर्ध्व मध्य और अध तीन। तो टेक्स्ट नंबर 18 में वो कंप्लीट करते हैं।
चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ।
हाँ, अब भगवान ने ये चौथा व्यक्ति है, नहीं तो भगवान अलग क्यों बता रहे हैं? दो जीवात्मा, परमात्मा वो तीन दोनों से अलग है, लेकिन वो मेरा अंश है, वो मेरा अंश है, वो विष्णु तत्व है, मेरा एक टुकड़ा है, एक या मेरा एक अंश है, विस्तार है परमात्मा। लेकिन मैं क्षर और अक्षर दोनों से पर हूं, इसलिए मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, सभी लोकों में वेदों में सब जगह मुझे पुरुषोत्तम बोला गया है। क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, क्षर जीवात्मा और अक्षर जीवात्मा इन दोनों का आदि वो है। ब्रह्म और परमात्मा ये दोनों का आदि वो है कृष्ण, इसलिए कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। Somebody can read. No one can surpass the Supreme Person of Godhead, Krishna.
No one
can surpass the Supreme Person of Godhead, Krishna.
भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न बद्ध जीव न मुक्त जीव। अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अवर्तनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निंदता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है।
भगवान से कोई नहीं है। सो भगवान का जो लोकल यूनिट है वो परमात्मा है, लोकलाइज एक्सपेक्ट, और वो केवल हृदय में नहीं, कण कण में सब जगह है। सर्व सचाह सब जगह है, एवरीवेयर, इवन अ स्मॉल पार्टिकल में भी वो परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी तत्व में बता रहे हैं कि कभी गलती से भी ये नहीं सोचना कि वी एंड कृष्णा आर सेम, हम मैं और कृष्ण एक हो, नहीं, नेवर। यस,
मैं ये बहुत पहले में एक लेक्चर सुन रहा था मालगोपाल का, यूएस कोर्स, उन्होंने बताया था विष्णु का डिफरेंट बताया था, अणु विशंति उन्होंने बताया था, जो अणु में विशंति मतलब प्रवेश करते हैं वो विष्णु, उन्होंने बताया।
हाँ
अच्छा,
अणु विशंति,
अणु विशंति मतलब विशंति का मतलब प्रवेश करते हैं, जो अणु में भी प्रवेश करते हैं
इसी विष्णु।
अच्छा,
विष्णु, हाँ, दैट्स फाइन। विष्णु शब्द का अर्थ ये होता है एक क्षोधक सा है विष्णु, जो अणु में प्रवेश करते हैं। बाकी ऐसे विष्णु की तो बहुत सारी कैटेगरी है, गर्भोदक साई है, क्षोधक साई है, ऐसे विष्णु अलग अलग है, लेकिन जो अणु तक में भी जा सकते हैं दैट इज विष्णु, जो और कोई नहीं जा सकता, नोबडी कैन गो। सो टेक्स्ट नंबर 18 में पुरुषोत्तम शब्द का जो उपयोग हुआ है ना, पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ ये होता है कि जो 64 कड़ा जिसके अंदर है, बाकी सब में नहीं है, पुरुषोत्तम केवल कृष्ण है, नारायण में भी नहीं है 64 कड़ा, नारायण में केवल 60 है, विष्णु में भी केवल 60 ही है, नारायण विष्णु एक ही है, शिव जी में उनसे कम है, 58, एक है मुक्ति देना और दूसरा डिफिकल्ट, एक है मुक्ति देना, विष्णु और शिव में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि शिव जी मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्ति भगवान नारायण दे सकते, लेकिन 64 कला केवल एक ही व्यक्ति में है पुरुषोत्तम। भागवत चैतन्य चरितामृत से जगह है, मेन चैतन्य चरितामृत। सो कृष्ण ही इज पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, उत्तम का अर्थ होता है कि ही नोज ही इज हैविंग ऑल द फोर थिंग्स विच इवन विष्णु इज नॉट हैविंग, रूप माधुरी मैं, therefore it is पुरुषोत्तम। इसे पुरुषोत्तम शब्द का उपयोग श्रीमद् भागवतम के कई जगह हुआ है, दसम स्कंध में भी कई जगह आता है पुरुषोत्तम शब्द का उपयोग, ये पुरुषोत्तम भगवान का एक नाम है, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है पुरुषोत्तम योग, इस चैप्टर का नाम भी है, और अधिक मास का नाम भी पुरुषोत्तम रखा है, बिकॉज दैट इज कृष्णस नेम पुरुषोत्तम। सो नाउ टेक्स्ट नंबर 19 दैट इज अबाउट उत्तम पुरुष, एक ही है पुरुषोत्तम, वास्तव में हम सब प्रकृति है, दो ही है, एक पुरुष है और प्रकृति है, दो ही है, और पुरुष एक ही है कृष्ण और बाकी सब प्रकृति है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्ति, यहाँ तक कि बलराम जी भी उनका दास है, ऐसा यहाँ तक है, ऑफकोर्स इज नॉट प्रकृति, बलराम जी भी कृष्ण का दास है। आर सब वृत्तिया जी जैसे करे से तैसे करे नृत्य, और कृष्ण जिसको जैसे नचाते वैसे सब नाचते हैं। ओके, सो टेक्स्ट नंबर 19, क्या करता है वो जान करके संबंध ज्ञान प्राप्त करने के बाद,
जो कोई भी मुझे संशय होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, यह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है।
ये सर्वभाव है ना भारत, वही है ना श्लोक, पुरुषोत्तम सर्ववित सर्ववित, सब कुछ जान गया वो, क्यों? क्योंकि वो मुझे जान गया पुरुषोत्तम, क्योंकि आगे पहले बोल दिया वेदांत कृत वेद विदेव जान, मैं वेदों को जान गया, वेद से वेद्य मिस मुझे जान गया, मिस वेदों को जान गया, अब वेदों को जान गया तो सब कुछ जान गया, वेदों में जो नहीं है उसको भी वो जान गया। सर्ववित सर्ववित, जब उसने पुरुषोत्तम को अगर नहीं पहचाना तो कुछ भी नहीं जानता है, ही नोज नथिंग। सर्वविद क्या करता है फिर, वो भजती मां, मेरा मेरा सेवा करता है, किस तरह से करता है, सर्वभाव है ना भारत, अपनी सारी इंद्रियों को सारी चेतना को सब रूप पूर्ण रूप से मेरे मुझे अर्पण करके ये कार्य करता है। तो ये है वेदों का पक्का फल सर्वविद, तो अंडरस्टैंड कृष्णा अर्थात प्योर डिवोशनल सर्विस इज द अल्टीमेट थिंग टू बी नोन इन वेदास, वेदों में सीखने का जो सबसे उत्तम वस्तु है वो है भक्ति योग। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फिर, अर्थात जो कृष्ण का भक्त है उसको जैसे गोपियों को गुरुकुल में बैठने की आवश्यकता नहीं थी। हमने कभी नहीं सुना कि वो गोपियां किसी गुरुकुल में बैठ करके पाठशाला पढ़ रही थी या क्या शास्त्र क्या है, तत्वमसी ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, नेवर। और गोपियों के तो छोड़ो, ये सुबल दूसरा कौन मित्र है, मधुमंगल, सुबल मधुमंगल दूसरा श्रीदाम सुदाम, ये इसको इनको कुछ कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी भक्त चाहे अनपढ़ हो, कोई भी भक्त चाहे कैसा भी मूर्ख हो दिखने में सांसारिक दृष्टि से, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है तो उसको ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या पढ़ने की? वेद पढ़ने की आवश्यकता है। अर्थात ऐसा भक्त अनपढ़ ही हो फिर भी भगवान उसके भक्ति को स्वीकार कर लेते। नाग पतंगियों का भक्ति स्वीकार किया, और नाग पतंगी क्या थोड़ी पढ़ी लिखी होती है, नाग पतंगियों का भक्ति स्वीकार किया, और चैतन्य महाप्रभु एक बार गए साउथ इंडिया की यात्रा में, तो एक लड़का एक भक्त था ब्राह्मण अनपढ़ था, उसको कुछ आता नहीं था, भगवद गीता खोल करके पढ़ता था, श्लोक गड़बड़ी करता है, लोग उस पर हंसते थे, बोले देख नाटक कर रहे हैं, श्लोक आता नहीं पढ़ना और पढ़ने का ढोंग कर रहा है। तो उसकी आंखों में से आंसू आ रहा, चैतन्य महाप्रभु उसको देखा, चैतन्य महाप्रभु अरे भाई तो श्लोक का उच्चारण ठीक से क्यों नहीं करते हो? उन्हें मुझे नहीं आता है, मैं क्या करूं? तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि रोज पढ़ना है भगवद गीता, रोज पढ़ना है, लेकिन आता तो है नहीं, फिर भी आज्ञा दी है रोज पढ़ना है, तो फिर तुम्हारी आंखों में से पानी क्यों आ रहा है? बोले जब भी मैं गीता पढ़ता हूं तो मैं सोचने लगता हूं कि ये कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पुरुषोत्तम है, हजारों लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है, ब्रह्मा शिव नारद आदि सब उनकी पूजा करते रहते हैं, योगी लोग जिसका ध्यान हजारों हजारों साल तक करके तब जाकर सिद्धि मिलती है उनको, तो इतने महान परमेश्वर ऐसे भगवान अर्जुन का नौकर बनने को तैयार हो गए, अर्जुन का दास बनने को तैयार हो गए। बस ये बात सुनकर के मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। कितना सोच रहे इतना दयाल कम बात है यार। दो श्लोक है ना श्रीमद् भागवतम के कि जिसको सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था गर्भ के अंदर व्यास देव ने, कृष्णा ने सुनाया था, तो वो सुन करके मुक्तात्मा सुखदेव गोस्वामी बाहर आ गए, जिसमें एक श्लोक ये था अहो बकीयम स्तनका लकूटम। एक श्लोक है जिसमें कृष्ण की कृपा का वर्णन है कि कृष्ण कितने दयालु कुंभा दयालु सुनम ब्रजेव। एक श्लोक ये है जिसमें कृष्ण बहुत दयालु है उसका वर्णन है कि अहो बकीयम, बकीयम का अर्थ होता है पुत्रा, पूतना जो स्तन कालकूटम, कालकूट नाम का विष अपने स्तन के ऊपर लगा के आई थी और भगवान ने उसकी उसके प्राण तो हर लिए लेकिन उसको यशोदा जैसी पवित्र माता की स्थान दे दिया। इतना दयालु कौन हो सकता है, कम वह दयालु सनम दे। दूसरा श्लोक था जिसमें कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन है कि ऐसा सुंदर स्वरूप और कहाँ मिलेगा, त्रिभंग सुंदर वेणु मुरली बजा रहे हैं, मोर पंखधारी ऐसा। तो दो श्लोक सुन के दो खत्म बात। तो भगवान को पता था ये दो ही काफी है, दो श्लोक से ही काम हो जाएगा, तो ये दो ही श्लोक सुनाया और सुखदेव गोस्वामी सीधा बाहर आ गए मुक्तात्मा सुखदेव गोस्वामी। ऐसे आत्माराम थे फिर भी ये दो श्लोक से प्रभावित हुए। सो कृष्ण सो मर्सी बोल तो चैतन्य महाप्रभु को कहा कि यू हैव अंडरस्टूड, तुम समझे हो भगवद गीता को अच्छी तरह से, भगवद गीता। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसके पास रहकर के स्वयं जिसने भगवद गीता बोला है कृष्ण स्वयं, उसने पर्सनली उस ब्राह्मण जो अनपढ़ था उसको पूरा भगवद गीता सिखाया, होल भगवद गीता ही हिमसेल्फ टॉट चैतन्य महाप्रभु। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को लिखना नहीं आता था, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जो थे उनको बोलो ना कि आपका नाम लिखो तो उनको नहीं आता था, बोले नाम कैसे लिखा जाता है, नाम लिखना नहीं आता था। लेकिन बाबा जी आचार्य इन और परंपरा वैष्णव आचार्य, और किसके गुरु थे, द मोस्ट स्कॉलर एंड लर्नेड एनसाइक्लोपीडिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती द मोस्ट लर्नेड आचार्य इन प्रेजेंट डेज, इतने विद्वान भक्ति सिद्धांत उनके गुरु थे, उनको कुछ नहीं आता था पढ़ने का। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज तो कृष्ण प्रेम महत्वपूर्ण है, तो वही प्रेम भगवान सर्वभाव है ना, सर्व सर्वविद भजते माम सर्वभाव। और वही मैं पुरुषोत्तम, कृष्ण कह रहे कि मैं वो पुरुषोत्तम हूं लेकिन असली पुरुषोत्तम कहने के लिए नहीं, जैसे अश्वकर्ण होता है ना, अश्वकर्ण सुना है ना आपने, अश्वकर्ण अश्वकर्ण का अर्थ होता है कि घोड़े जैसे कान, लेकिन वास्तव में घोड़े जैसे कान नहीं होता है, वो नाम होता है केवल, तो नाम मात्र नहीं है भगवान, वास्तव में वो पुरुषोत्तम है। अब बीसवें श्लोक में अंतिम इसका आता है प्रयोजन, वो बड़ी है।
हे अनुग, यह वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे।
श्लोक पढ़िए। भारत जो इस तरह से कृष्ण को समझता है और तो उनकी सेवा करता है, भगवान उसको सिद्धि देते हैं। लेकिन जो नहीं समझता है उसको जो प्रॉपर तात्पर्य में कहते हैं कि हाउ इंटेलिजेंट ही मे बी इन द एस्टिमेशन ऑफ सम कॉमन मैन इज नॉट परफेक्टली इंटेलिजेंट। साधारण मनुष्य शायद उसको कितना भी अच्छा मान आदर दे, विद्वान मान ले, बुद्धिशाली मान ले, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। बुद्धिमान तो एक ही है, जय बजे सही चतुर, जो बजता वो चतुर है बस, जो सेवा करता है वही चतुर है, यही बजे सही चतुर अभक्त ही अच्छा, बाकी सब अभक्त है। तात्पर्य पड़ी द वर्ड अनाका
अनक शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनक अर्थात है निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कर्म समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है।
फर्दर प्रपट है आगे पढ़िए।
शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावना रूप में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम पांच श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम युग की विवेचना हुई है।
कंप्लीट
यस
ओके। सो तो भगवान को इस तरह से पुरुषोत्तम समझने के लिए, एक्चुअली भगवान को समझने के लिए जो ऐसे ऊपर बताया भगवान ने, उसके लिए हमें पाप से मुक्त होना पड़ता है, पाप रहित होना पड़ता है, अर्थात अनर्थ निवृत्ति की अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ है। अनर्थ का अर्थ होता है कि हम भगवान की लीला से काफी दूर है, भगवान को पूर्ण रूप से जानने से काफी दूर है। अनर्थ का अर्थ होता है पाप, अपराध, फिर अनवांटेड डिजायर्स, ये सब कुछ अनर्थ में आता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इस नवदा भक्ति में जुड़ता है और व्यवसायत्मक बुद्धि स्थिर होता है तो उसका परिणाम ये आता है कि वो धीरे 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 शनै शनै अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त कर सकता है, क्रमशः धीरे धीरे धीरे, अचानक से कुछ नहीं होने वाला, शास्त्र में ऐसा होता ही नहीं है। छठे दिन भगवान बताते हैं ना कि आपको दृढ़ निश्चय के साथ इस मार्ग को अनुसरण करना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब हम जुड़ते हैं तो हमने सुना था वो स्पैरो का एग्जांपल सुना था ना, तो उतना दृढ़ संकल्प लिए तभी उसको कोई चिड़िया को जाके पूछेगा तो पत्थर फेंक रहे हो तो इससे तो सूखने वाला है नहीं समुन्द्र, तो क्या करोगे? तो उसने क्या कहा कि जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी तब तक मैं ये कार्य करता हूँ, सुखाने का काम करूंगी। अर्थात ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए मेरा कि मैं ये कार्य अवश्य करूंगा और लाइफ टाइम तक यही करता रहूंगा। तो इस तरह से फिर धीरे 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 हम अपने अनर्थ को शुद्ध कर सकते हैं, देन वी कैन कम टू द पोजिशन वेर यू अंडरस्टैंड पुरुषोत्तम, भगवान को समझ सकते हैं। सो वी स्टॉप हियर। 20वां श्लोक का एक्सरसाइज होगा और 16वां अध्याय नेक्स्ट टाइम करेंगे। स्टॉप हियर।